والسلام عليك. مع بعض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो आखिरी बात क्या हो रही थी पिछली क्लास में, तो याद है जी? हाँ जी,
उस्मानी अज़ादान ने साथ में सब तैयार करवाए और वो मेरे साथ तो प्रोसेस के साथ तो बहुत ही
हाँ, बिल्कुल सही। आखिरी बात बिल्कुल यही हुई थी कि ये जो जमीय कुरान का दूसरा फेज उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में हुआ, तो उसका आउटपुट क्या था, यानी जिसको हम कहते हैं ना, आपको बताया था, ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उनसे पहले जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तो अब हर प्रोजेक्ट का एक डिलीवरेबल होता है, ठीक है? इसका एक आउटपुट होता है कि आप प्रोजेक्ट के नतीजे में क्या चीज़ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं ना, क्या चीज़ डिलीवर करते हैं। तो इसका डिलीवरेबल क्या था? सुभान अल्लाह, अल्लाह की किताब। सही है, इससे बेहतरीन प्रोजेक्ट और कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है, और से बेहतरीन डिलीवरेबल और क्या हो सकता है? तो 7 मसहफ तैयार किए गए, और ये वो ऐसे मसहफ थे कि जिनके अंदर सूरतों की तरतीब भी मौजूद थी, जिस तरतीब से हम पढ़ते हैं कुरान मजीद को, उस तरतीब में थे ये। और इनके अंदर जो है वो 7ों किरातों को जो है वो जमा भी किया गया था। इस किस्म की रस्म अल-खत, यानी इस किस्म का जो है वो राइटिंग इस्तेमाल की गई थी, या फॉन्ट, फॉन्ट तो खैर नहीं, लेकिन तहरीर का ऐसा तरीका था कि जिसमें ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। आपको पिछली क्लास में हमने कुछ किरातें भी सुनवाई थी, आप कुछ कह रहे थे?
जबर जबर
इसमें जेर जबर पेश और नुक्ते नहीं थे, ठीक है? इस वाले मसाफ के अंदर नहीं थे, बाद में जा करके फिर ये सब लगाया गया था। अच्छा, तारीख जमे कुरान के अंदर एक बड़ा अहम नाम जो पिछले हफ्ते हमने पढ़ा, और फिर उससे थोड़ी सी बात आगे बढ़ी थी उस वाले टॉपिक के ऊपर, वो था हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु का तस्किरा था, ठीक है? तो हुजैफा बिन यमान का उसी क्लास के अंदर ही ख्याल आया कि ये तो वही सहाबी हैं जिनकी कब्र जो है वो इराक में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की गई थी, ठीक है? तो उस वाकये की 3 तस्वीरें जो है वो आपके फुटबॉल कोच और अंग्रेजी के टीचर है, कुछ बच्चों के अंग्रेजी के टीचर हैं, कुछ बच्चों के फुटबॉल के कोच हैं, अब्दुलरहमान मोतन भाई की, तो उन्होंने जो है वो तस्वीरें शेयर करी हमारे साथ, तो वो हमने फिर आगे ग्रुप्स के ऊपर भेज दी थी। किसी को देखने का मौका मिला उन पिक्चर्स को, जो कि उस इवेंट की पिक्चर्स हैं कि जिसमें सहाबे कराम के जिस्म जो है ना वो जाहिर ढके हुए हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों रखे हुए हैं, लोग उनके गिर्द जो है जमा हैं, फिर उसके बाद उनको गाड़ियों के अंदर रख करके फिर दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जा रहा है। बाकायदा फोटोज मौजूद हैं उस इवेंट की, सही है? तो वो हमने फिर ग्रुप पे शेयर की थी। अगर आपने देखा नहीं है तो अब्बू या अम्मी से कहिएगा कि वो आपको दिखा दें। अच्छी बात है कि आपने नहीं देखा, आपके पास कौन सा भी फोन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, उनसे कहिएगा वो दिखा दें। तो उसके ऊपर ना फिर हमने मैसेज भी एक लिखा था, तो मैसेज अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसमें से उसने क्या समझा, और कल के फिर बयान के अंदर भी इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करी थी, तो आप में से तकरीबन सारे मौजूद थे। किसी को समझ में आई बात? जब ये सहाबा कराम के कबूर की बात करी थी कि अल्लाह ताला ने ये जो जिस्म सहाबा कराम के बिल्कुल महफूज करके रखे, तो क्यों महफूज करके रखे? और इस किस्म का जो वाकया हुआ कि लोगों को दिखा भी दिया कि ये अजसाम जो है वो बिल्कुल महफूज है, तो वो क्यों महफूज किए? पहले वाओ वाले बच्चों से पूछते हैं। आप नाराज तो नहीं होते? तो वाओ करने के लिए है? क्या बात है भाई। राइट, तो क्यों किया ये सारा कुछ, कौन बताएगा? अच्छा, आपने वैसे पहले उठाया था तो आप बताने? नहीं, चले,
हाँ
आपने तो आपने हाथ उठाया, मैंने गलत देखा शायद। जी आप बता रहे थे पहले, उसके बाद ये करामत दिखाई अल्लाह ताला ने, करामत ठीक है, तो ये उन सहाबा कराम की करामत भी कहला सकती है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो औलिया अल्लाह के साथ था, और ये एक बहुत ही आउट ऑफ द ऑर्डिनरी किस्म का एक वाकया था। सही है, तो और ज्यादा आप क्या बता रहे थे, करामत दिखाना। सही है, अच्छा आप इब्राहिम।
जब अल्लाह ताला की दीन की नफी होती है तो अल्लाह ताला दलाई के तौर पे, प्रूफ के तौर पे से जिन्होंने हमारे दीन का काम करा उनको, हमारे दीन को बदलने नहीं देते और उनका एहतराम आज कल तो एज ए दलील के तौर पर लगा रहे हैं, दूसरा दिखाने के तौर पे दीन का काम
एक
करने वाले के लिए गाइडेंस करते हैं।
तो है ना वो शेर, शेरो शायरी, ये जमी मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हो गया शेर, जिसको कहते हैं पोइट्री। ठीक है ना, समझ में क्या आया इससे? इससे जो है ना वो शेर का मकसद देखें, याद रखें, शेर व शायरी, शेर व शायरी, उनसे बात भी हुई थी, अल्लामा इकबाल के शेर हैं और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे शेर हैं, इनका एक होता है मकसद। इनका मकसद क्या होता है? वो होता है, जब तक हम इधर पढ़े, क्या होता है इसका मकसद? सो दैट नो वन कैन गिव एनीथिंग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, सो पीपल कुड हैव अ स्ट्रॉन्ग ईमान। शेर का क्या मकसद होता है? धारणा, राइट। लाइन का मकसद तो रोर करना होता है, शेर का मकसद होता है धारणा। शेर का मकसद क्या होता है? शेर का मकसद होता है जज्बात को उभारना, ठीक है ना, वलवला पैदा करना, और ये मकसद, ये गलत मकसद नहीं है, ये सुन्नत से साबित है। आपको अगर याद हो, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमने एक मौके पे पढ़ा था, किसी गज़वे खैबर में गालबन जब सहाबा जा रहे थे, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रजी अल्लाह तआला जो है ना, वो अशआर पढ़ रहे थे लोगों के जज्बात को उभारने के लिए। उमर रजा, तुम क्या ये नबी अलैहिस्सलाम के सामने से अशआर पढ़ रहे? नहीं, पढ़ने दो इसको, पढ़ने दो। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम को खुद अल्लाह तआला ने शायर नहीं बनाया, ठीक है, और बाकायदा ये भी नहीं कि खाली उनको शेर, आपसे सर ने कभी शेर कहे नहीं, बल्कि अल्लाह ताला मेड श्योर टू मेंशन इट इन द कुरान मोर देन वन टाइम्स। ठीक है, वमा हुआ बिकौले शायर, ये एक आयत मुझे अभी याद आती है, और एक और, हाँ,
वो
वमा यम बगीला, इससे पहले वाली आयत,
तो
वमा है नहीं, इसे वमा यम बगीला से पहले वाली,
वो
वमा अल्लमनाहु शेरा, शेर, ठीक है ना, हमने उसको शेर नहीं सिखाया, वमा अल्लमनाहु शेरा, वमा यम बगीला लहू, यम बगी लहू का मतलब ये होता है कि ये उनके मुनासिब हाल नहीं था, ये उनके मुनासिब हाल नहीं था, ये उनके, इट वॉज नॉट बिकमिंग ऑफ हिम, इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हिम। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम का काम क्या था? वलवला, अंगेजी। नबी अलैहिस्सलाम का काम था जज्बात को भड़काना। नबी अलैहिस्सलाम का क्या काम था भाई? एक मिनट से पूछ रहे,
बराबर
बलागुल मुबीन, बिल्कुल साफ साफ बात करना और साफ साफ मैसेज पहुंचाना जो कि अगले बंदे को समझ में भी आ सके, ये नबी अलैहिस्सलाम का काम था। शेर व शायरी आती समझ में किसी में? नहीं आती समझ में, शेर व शायरी समझ में नहीं आती, बहुत कम के पूरी बात समझ में आती है, बहुत कम के है ना बहुत थोड़ा थोड़ा सा समझ में आता है, और उसके अंदर तो बात ही पूरी नहीं होती, अक्सर तो बातें ऐसी होती हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, शेर के अंदर तो रियलिटी का तो अच्छा खासा है। वो हसन बिन साबित का क्या शेर है, अल्लाह ताला ने आपको ऐसे बनाया गोया कि आपसे पूछ के बनाया आपको, अल्लाह ताला को पूछ के बनाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम को पूछ के बनाया कि आपको हमें कैसे बनाने चाहिए, तो शेर व शायरी के अंदर रियलिटी नहीं होती, अक्सर रियलिटी नहीं होती, या होती भी है तो बड़ी ढकी छुपी और बड़े किनायों के अंदर और बड़े अंदाज के अंदर, है ना। तो शेर व शायरी का काम, नबी का तो ये काम ही नहीं है कि ढकी छुपी बात करें, आधी बात करें, है ना, या अजीब तरीके से बात करें, है ना, और बस जो है वो जज्बात को भड़काए, जज्बात को भड़काए। ये तो नबी का काम नहीं है ना। नबी का काम क्या है? पूरी बात समझाना, पूरी बात पहुंचाना, यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसके ऊपर डाल देना कि अब आई हैव डन माई जॉब, द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब तुम इसको मानो या ना मानो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड यू विल गेट द रिवॉर्ड अगर आप मानोगे, और अगर आप नहीं मानोगे यू विल गेट पनिशमेंट फॉर इट। ठीक है, ये है नबी का काम। हम कौन हैं? हम नबी के उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने क्या काम इनहेरिट किया है नबियों से? नबियों का काम इनहेरिट किया है। तो हम शेर व शायरी कर लें, जिसको आया है, आता है शेर व शायरी करना, वो करे बेशक, उसको मना नहीं किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजायज करार नहीं दिया, ठीक है ना, एज लॉन्ग एज शेर के अंदर कोई वाहियात किस्म की बात ना हो, गैर शरी बात ना हो, तो ठीक है कर लो शेर। लेकिन इसकी बुनियाद पे हमने दीन नहीं समझना। बात हो रही थी किसी से जी शेर समझने के लिए इखबारियात को समझेंगे, उन्होंने कहा इखबारियात से दीन नहीं समझा जा, दीन समझने के लिए इखबारियात नहीं, इखबारियात से दीन नहीं समझना, इकबाल के शेरों से हमने दीन समझना नहीं, इकबाल के शेरों को हमने जरा मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल करना बस, ठीक है, तो उसको उसके हद में रखें। बहरहाल तो फिर हुज़ैफ़ा बिन यमान अतरान का जो वाकया था उसका मकसद क्या था? करामत दिखाना। तो करामत क्यों दिखाते हैं? या करामत जब नबी के हाथ पे होती है तो क्या होता है? वो मुआजजा, ठीक है ना। तो मुआजजा क्यों दिखाते हैं? इसलिए नहीं कि लोग एक्साइटेड हो जाएं और लोग जो है वो वाव करना शुरू कर दें और आपस में जो है वो चहमगोइयां शुरू कर दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुआजजा करामत इन दोनों का मकसद ये होता है कि जो वो बात कह रहे हैं, जो वो मैसेज दे रहे हैं, जो वो सही गलत की डेफिनेशंस बता रहे हैं, उसकी दलील हो जाए कि हाँ वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल 100% कंफर्म बात कह रहे हैं, ताकि हमारे जहन में कोई डाउट ना रहे उसके बारे में, कोई शक ना रहे उसके बारे में, शुबो ना रहे उसके बारे में। ठीक है, ये होता है मकसद मुअज्जे का, ये होता था मकसद मुअज्जे का, और यही मकसद होता है करामत का, और यही मकसद होता है अल्लाह ताला जब कोई अपनी कुदरत दिखाते हैं। तो ये जो कब्रों का बिल्कुल प्रिजर्व होना, इसको अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी भी कह सकते हैं, ठीक है ना, और उनका करामत भी कह सकते हैं। बहरहाल तो इस मकसद को हम याद रखें ताकि हमारा ईमान मजबूत हो जाए ना, हम बिल्कुल डाउट ना कि इन लोगों की जिंदगियां जैसे गुजरी थी, हम मान लें कि वही तरीका है जिंदगी गुजारने का, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है जिंदगी गुजारने का। उन लोगों ने जिस चीज को प्रीच किया, जो चीज उन्होंने बताई, वही सही बात है। ये नहीं कि आज टीवी पे बैठ करके जो दीन की बातें कर रहे हैं, या सोशल मीडिया के ऊपर क्या करके जो दीन दीन खेल रहे हैं, पिट्टू पिट्टू खेलने की तरह दीन दीन खेल रहे हैं आजकल लोग, है ना, ये नहीं है दीन। दीन तो वो है जो सहाबा ने सीखा नबी अलैहिस्सलाम से, और दीन तो वही है जो कि इन अल्लाह वालों ने, चाहे वो किसी झुग्गी में बैठे हुए थे, चाहे किसी मदरसे में बैठे हुए थे, चाहे जो है वो किसी और खत्म नबूवत की मेहनत में लगे वालों की भी, अल्लाह ताला ने इस तरह के दिखाए हमें। इससे क्या चीज कंफर्म हो गई कि खत्म नबूवत की जो मेहनत है, ये ऐसा नहीं है कि पीपल आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, है, कोई और काम करने को नहीं मिला, चलो जी खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू, नहीं, ये बिल्कुल अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक वाली मेहनत है, और इस मेहनत के अंदर यानी अल्लाह ताला की शामिल है, रजा शामिल है, ठीक है। तो इस ये है मकसद इसका, हम इस मकसद को बिल्कुल भी ना भूलें। तो सैफ बिन यमान अतान के वाक़े से फिर ये सारी बातें मिलती हैं, और फिर आगे जो है जमे कुरान का वाक़या थोड़ा सा रह गया था और हम इस किताब से पढ़ ही रहे थे, तो जब 7 सूबों में ये पहुंचा दिए गए। अब हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामकातुम ने आगे लिखा है कि मजकूरा वाला काम करने के लिए इन हजरात ने बुनियादी तौर पर तो इन्हीं सहीफों को सामने रखा जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में लिखे गए थे, क्योंकि था ना वो सहीफा या वो सहीफे, क्योंकि वो पारों की शक्ल में थे गोया के, तो उसको जो है वो स्टैंडर्ड बनाया। इसके साथ ही मजीद एहतियात के लिए फिर दोबारा से वो मेहनत जो है ना वो रिपीट करी जो कि अबू बकर सिद्दीक के जमाने में हुई थी। तो चुनाचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जमाने की जो मुतफर्रक तहरीरें, ठीक यानी डिस्पर्स, किसी के पास कुछ आयतें लिखी हुई नहीं, किसी के पास कुछ आयतें लिखी हुई थी, किसी के पास कुछ, तो वो मुख्तलिफ सहाब के पास महफूज थी, लोगों के अपने पर्सनल स्क्राइब्स थे वो, ठीक है, वो लिखी हुई शक्ल में लोगों ने पर्सनली अपने पास रखी हुई थी, उनको दोबारा कलेक्ट किया गया, सही है, और उनके साथ असर नौ मुकाबला करके ये नए नुस्खे तैयार किए गए, ठीक है, यानी जो उम नुस्खा था वो तो हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु के घर से बुलाया गया ना, अब जो है वो दूसरे सहाबा के पास जो उनके अपने अपने पर्सनल थे नुस्खे, उनको भी बुलाया मंगवाया गया और फिर इनको फिर से टैली किया गया, ठीक है, फिर से कंपेयर किया गया और ये नए नुस्खे, साथ जो नुस्खे थे ये तैयार किए गए इस मरतबा। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक इसके अंदर पॉइंट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेकिन होना चाहिए लोगों को, कि इस मरतबा सूरह अहज़ाब की एक आयत, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैह, ये सूरह अहज़ाब की आयत है, तो ये जो लिखी हुई हजरत सिर्फ हजरत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मिली, ठीक है, तो सूरह अहज़ाब की ये आयत सिर्फ हजरत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मिली। अब ये जो है ना कि भाई ये वाली आयत जो है वो सिर्फ एक सहाबी के पास मिली, ये हदीस मुबारका के अंदर ये मौजूद है, ठीक है, हदीस की सही, शायद सही बुखारी में, सही मुस्लिम में ये बात मौजूद है कि ये वाली आयत जो है वो सिर्फ एक सहाबी के पास मिली। अब इससे जो है ना वो हम जैसे कम इन लोगों को शक होता है कि अच्छा तो बाकी सहाबा के पास ये आयत लिखी भी नहीं थी, तो फिर इस एक सहाबी के पास लिखी हुई आयत को कुरान का हिस्सा क्यों बना दिया गया, ठीक है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, इसके ऊपर कंसेंसस तो नहीं हुआ, बाकी सहाबा के पास तो ये लिखी भी नहीं थी, ठीक है, तो इसका जवाब जो है वो हजरत ने दिया है बड़े अच्छे से तफसील के साथ दिया है कि
ये शहादत दो आदमियों के बराबर
नहीं, शहादत दो आदमियों के बराबर का मसला नहीं था, ये जो हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं, ठीक है, कि ये आयत सिर्फ एक सहाबी के पास लिखी हुई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हदीस मुबारका के अंदर तो अल्फाज मौजूद होते हैं ना, लेकिन उनका पूरा एक पसे मंजर होता है, एक पूरा बैकग्राउंड होता है, उसके जानने के बाद ही वो हदीस मुबारक समझ में आती है, तो इसका पसे मंजर या बैकग्राउंड या कराइन इसके ये हैं कि भाई सिर्फ लिखी हुई शक्ल में एक सहाबी के पास थी, लेकिन रटी हुई शक्ल में तो सौवों सहाबा के पास, यानी बहुत बड़ी तादाद में सहाबा को ये आयत याद थी, तो याद तो बहुत सारे सहाबा को थी, लिखी हुई शक्ल में सिर्फ एक साहब के पास थी, ठीक है, तो ये बस इसकी एक्सप्लेनेशन है जी
अच्छा अच्छा
इनके पास, हफ्सा रज़ियल्लाहु के पास नहीं, उसके अंदर तो थी, ठीक है, क्योंकि उस वक्त भी जो है ना ये मिल गई थी, वो हफ्सा रज़ियल्लाहु वाले नुस्खे के अंदर ये दर्ज हो गई थी। अच्छा, ये जो लिखी हुई शक्ल में आयत का मामला है ना, वो असल में मुराद से ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सामने लिखवाई थी आयतें, है ना, जब नाजिल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई आयत नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबी ने वही सहाबी में से किसी एक को या दो को या तीन को बुलवाते थे और उनसे कहते थे मेरे सामने इसको अपने पास लिखो, ठीक है, तो ये वाली आयत उस वक्त जो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सामने लिखवाई थी ना, वो सिर्फ इनके पास लिखवाई थी और किसी और सहाबी को लिखवाई नहीं थी, लेकिन पढ़ करके नबी अलैहिस्सलाम ने सुनाया, हजारों सहाबा ने सुना और उन्होंने इसको याद कर लिया, ठीक है, तो याददाश्त में सबके पास मौजूद थी लिखी हुई शक्ल में, और लिखी हुई शक्ल में से मुराद नबी अलैहिस्सलाम के सामने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्टेट करवा के लिखी थी वो सिर्फ इन्हीं के पास मौजूद, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आया यहाँ पे कि नॉट श्योर हाउ टू इंटरप्रेट दिस आया रिलेटेड टू ऑयल्स। अच्छा, वो जीरो सूरह शौरा की पूरी माशाल्लाह सूरत ही जो है वो शौरा के नाम पर है, तो इसके अंदर जो है वो आयत है, वो आयत तो मुझे अरबी में याद नहीं है लेकिन तर्जुमा अंग्रेजी में एक नकल किया है, एंड द पोएट्स ओनली द डिविएटर्स फॉलो देम, डू यू नॉट सी दैट दे वॉन्डर इन एवरी वैली एंड से वॉट दे डू नॉट डू एक्सेप्ट फॉर दोज हु बिलीव डू राइट हिज डीड्स एंड रिमेम्बर अल्लाह मच, ठीक है, तो इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तिस्ना भी बता दिया, एक्सेप्शन भी बता दी कि एट लार्ज बाय एंड लार्ज जो शायर लोग होते हैं ना वो अपनी तरफ से कहते हैं, डेंगे मारते हैं, डेंगे मारते रहते हैं, आसमान और जमीन के कुलाबे मिलाते रहते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर। तो ज्यादातर तो शायर लोग जो है ना यही करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शायर हैं, ठीक है ना, जो आमनु व अमिलु सालिहात, ठीक है, और जकर अल्लाह कसीरा, जो कि कसरत के साथ अल्लाह को याद करते हैं, ऐसे भी शायर मौजूद। तो ऐसे शायर जो हैं ये फिर नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में भी थे, एक से ज्यादा थे। हसान बिन साबित रहता शायर रसूल, बाकायदा टाइटल पाने वाले बन गए, और भी सहाबा थे, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी शायरा थी, और भी बहुत सारे। तो उनको फिर इस आयत में बुरा नहीं कहा गया, तो एग्जेम्प्ट कर लिया ना अल्लाह ताला ने खुद ही, इल्लज़ीना आमनू वअमिलु सालिहात वज़कुरुल्लाह कसीरा, ऐसे भी शायर। जी
والشعراء ويتبعهم الغاو ويتبعهم الغاوون
وتبون الطاعون، يعني غوا، ऐसे इन चीजों को जो है वो फॉलो करते हैं शुआरा लोग। जी
जो बाकी साथ उसके क्या महसूस है
सात नुस्खे तो महफूज हैं, लेकिन को जो है ना फिर आगे हम पढ़ रहे थे, तो अभी सुने तो अच्छा। फिर उसके बाद हजरत जैद बिन साबित, अच्छा ये लिखा कि ये जो आयत ना जो सिर्फ एक ही सहाबी के पास लिखी हुई मिली थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आयत किसी और शख्स को याद नहीं थी, क्योंकि हजरत जैद बिन साबित खुद फरमाते हैं कि मुझे मसहफ लिखते वक्त सूरह अहज़ाब की आयत ना मिली जो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए सुना करता था। हमने उसे तलाश किया तो वो खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास लिखी हुई मिल गई। ठीक है, यानी सुना करता था वो तो मुझे याद थी और दूसरे सहाबों को भी याद थी, लेकिन लिखी हुई आपसे सल्लम के सामने डिक्टेटेड वो सिर्फ खुज़ैमा बिन साबित अंसारी के पास मिली। तो इससे साफ वाज़े है कि ये आयत हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सहाबा को अच्छी तरह याद थी। इसी तरह इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये आयत कहीं और लिखी हुई ना थी, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में जो सहीफे लिखे गए, जाहिर है कि ये आयत उनमें मौजूद थी। नीज हजरत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, आपके सवाल का जवाब उस वाली सब मसहब के अंदर ये मौजूद थी, नीज दूसरे सहाबा के पास कुरान करीम के जो इनफरादी तौर पर लिखे हुए नुस्खे मौजूद थे उनमें ये आयत भी शामिल थी। लेकिन चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने की तरह इस मरतबा भी उन तमाम जो मुतफर्रक यानी डिस्पर्स तहरीरें थी उनको जमा किया गया था जो सहाबा कराम के पास लिखी हुई थी, इसलिए हजरत जैद रतान वगैरह ने कोई आयत उन मसाहिफ में उस वक्त तक नहीं लिखी जब तक उन तहरीरों में भी वो नहीं मिल गई। इस तरह दूसरी आयतें तो मुतादिद सहाबा के पास अलहदा लिखी हुई भी मिली, लेकिन सूरह अहज़ाब की आयत सिवाय हजरत खुजैमा बिन साबित के किसी और के पास अलग लिखी हुई दस्तियाब नहीं हुई। पीछे हजरत ने लिखा था कि नबी अलैहिस्सलाम की डिक्टेट करवाई हुई लिखी हुई आयत, ठीक है, तो वो सिर्फ इनके पास थी। जी
बताया कि सारे
उन्नायतों का क्या किया जाए, क्या किया गया, वो के अंदर नहीं लिखी गई, तो उनके जो है ना वो सारे जो नुस्खे थे ना, फिर उन सबको इकट्ठा किया गया और टॉर्च कर दिया गया, ठीक है, यानी उनको आग लगा दी गई, नस नस आतिश कर दिया गया। एक कुरान करीम के मुतअद्दिद मेयारी नुस्खे तैयार फरमाने के बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो तमाम इनफरादी नुस्खे नजर आतिश कर दिए, ठीक है, जो मुख्तलिफ सहाबा के पास मौजूद थे, ताकि रस्म उल खत मुसल्लमा क़िरातों के इज्तिमा और सूरतों की तरतीब के एतबार से तमाम मसाहिफ यकसा हो जाएं और उनमें कोई इख्तलाफ बाकी ना रहे। ठीक है, तो कंफ्यूजन के जो भी सबब बन सकते थे बाद में कि भाई ये जो सात मसाहिफ हैं इनके अंदर तो इस तरतीब में लिखा हुआ है और बाकी जो है उनके अंदर दूसरी तरतीब में लिखा हुआ है, दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, तो नए आने वालों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती थी। तो फिर इसका तदारुक कैसे किया गया कि उन तमाम नुस्खों को जो है ना वो नजर आतिश कर दिया, तो उस्मान गनी ताला उन्होंने सबको अपने पास कलेक्ट किया और उसके बाद उनको नजर आतिश करवा दिया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के इस कारनामे को पूरी उम्मत ने बनजरे इस्तेहसान देखा और तमाम सहाबा ने इस काम में उनकी ताईद और हिमायत फरमाई। सिर्फ हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को इस मामले में कुछ रंजिश हुई। ठीक है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह जो हैं वो इस मामले में नाराज हो गए। ठीक है, वो क्यों नाराज हो गए? क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह जो है ना वो इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल नहीं थे। ठीक है, क्यों शामिल नहीं थे? उसकी वजह यह है कि वो इराक में थे और वहां पे वो दरसो तदरीस का काम कर रहे थे और उनका मदीना तैयबा आने का कोई प्लान नहीं था अभी। ठीक है, और इन लोगों को चूंकि अभी इतना इख्तलाफ बढ़ रहा था, लोग आपस में जो है वो झगड़ रहे थे, हत्ता के कुफर की नौबत भी आ रही थी कि वो गलत कुरान पढ़ रहा है, तुम काफिर हो गए, तुम गलत कुरान पढ़ रहे हो, ये कहता था ये गलत कुरान पढ़ रहा है क्योंकि इस वजह से तुम काफिर हो गए हो। ये इतना सीरियस हो गया था मसला कि उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का जो जो उनको अल्लाह ताला ने मुकाम दिया था खिलाफत का, तो उन्होंने ये फैसला किया कि दिस कैन नॉट बी फर्दर डिलेड, हम बिल्कुल इसमें अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो है वो अभी आने में, उनको जाहिर है उस जमाने में सफर भी जो है वो कितना लंबा होता था और ऊँटों के ऊपर पैदल लोग सफर किया करते थे, तो इसको हम डिले नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो है उनको जब पता चला कि भाई मेरी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, जबकि वो सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले सहाबा में अब्दुल्ला इब्ने मसूद का नाम आता है ना, ठीक है, छठे थे वो मुसलमान होने वाले, यानी साबिकून अल अव्वलून अब्दुल्ला इब्ने मसूद, और फुकहा के अंदर बाकी तो अबू बकर सिद्दीक रतान और भी बड़े बड़े सहाबा जो है वो फकीह थे, लेकिन वो लोग चुप रहा करते थे, वो लोग जो है ना वो फतवे हर फतवे नहीं दिया करते थे और वो इस तरह से बिठा करके दरस व तदरीस का काम नहीं किया करते थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद उन सहाबा में से थे जो कि बाकायदा फतवे दिया करते थे, दरसो तदरीस का काम किया करते थे। तो अब एक यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक काम हो रहा है और यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही सीनियर तरीन प्रोफेसर जो है वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बने, तो इसका मतलब अगर वो नाराज होता है तो उनकी नाराजगी का ये सबब नहीं था कि मुझे इज्जत नहीं दी गई, मुझे मेरा मकाम नहीं दिया गया, मुझे मेरा मर्तबा नहीं दिया गया। ठीक है ना, नहीं, ये तो रूहानी बीमारियां होती हैं, इज्जत के अपनी जाती इज्जत की फिक्र करना, और सहाबा तो इन तमाम बीमारियों से जो है वो पाक थे, अल्लाह ताला ने पाक करवा दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। तो वो खाली इस वजह से कह रहे थे कि भाई मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सब कुछ सीखा, मेरे पास जो है वो इतना इल्म मौजूद है और आप लोगों ने मेरा इंतजार नहीं किया, हो सकता है मुझसे आपको और फायदा मंद कोई चीज मिल सकती थी। ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता तो वो प्रोजेक्ट और ज्यादा एफिशिएंटली हो सकता था। ठीक है, तो इस वजह से उनको खाली रंजिश थी और ये कोई जाती वजह से बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, लेकिन अल्लाह ताला ने जो अथॉरिटी दी थी वो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को दी, तो उनकी बात जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से उसको यानी सपोर्ट हासिल होती है। ठीक है, खलीफा जो होता है उसके ऊपर अल्लाह ताला का खुसूसी फजल होता है। ठीक है, हत्ता के इवन खलीफा का कोई नामजद काजी भी हो ना, काजी जज जिसको कि खलीफा ने नामजद किया होता है, काजी जब कोई फैसला देता है तो वो फैसला अल्लाह ताला की तरफ से फैसला समझा जाता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ही का एक कॉल हमने सुना कि जब आज के जमाने में काजी तो होते नहीं, आज के जमाने में तो मुफ्ती होते हैं ना, जो दारुल इफ्ता की स्टैंप लगा करके जो है वो फतवा जारी करते हैं, तो फरमाया कि ये जो दारुल इफ्ता की स्टैंप के साथ कोई फतवा जारी होता है ना, ये गोया के अल्लाह ताला का दस्तखत होता है, गोया के अल्लाह ताला का दस्तखत हो, किसकी दस्तखत होती है, उनका सिग्नेचर होता है। ठीक है ना, हालांकि एक बंदे का सिग्नेचर, ये तो अल्लाह फौका अयदीहिम, ये तो अल्लाह ताला का हाथ जो है वो जमात के ऊपर है और अल्लाह ताला के जो है वो मदद शामिल हाल होती है वगैरह। बहरहाल, तो इस वजह से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का जो मामला था वो बिल्कुल ठीक था, तो ये मसला भी बाद में सारा खतम हो गया और लोगों ने फरमाया, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि उस्मान के बारे में कोई बात उनकी भलाई के सवा ना कहो, क्योंकि अल्लाह की कसम उन्होंने मसाहिब के मामले में जो काम किया वो हम सब की मौजूदगी और मशवरे से किया। ठीक है, आप लोग बोर हो गए, बातें शुरू हो गए, आप तो बिल्कुल मेरे बराबर में बैठे हुए, तो मैं डिस्टर्ब होता रहूंगा। अच्छा, थोड़ी सी और टाइम, थोड़ा सा टाइम रहेगा। अच्छा, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का ये बहुत बड़ा कारनामा तफसील के साथ पढ़ के अब हम जो है ना वो आगे बढ़ते हैं कि आपके जमाने में फतूहात बहुत हुई, उमर रजान के जो बाउंड्रीज थी उनके जमाने की वो और ज्यादा एक्सपेंड हुई, ठीक है, तो इस्लाम जो है वो रशिया तक पहुंच गया। जी
कुरान को नजर आतिश करना, आजकल अगर कोई नजर आतिश करता है तो हम उस पर तोहमत इल्जाम लगा देते हैं। जमाने में जो ये उससे किस तरीके से मुख्तलिफ है आजकल के दौर में, जो उस पर तोहमत लगा दी मार्केट लंदन वासी भी करते हैं किसी तरीके से।
इसका जो शरी मसला है जो उलमा हजार जवाब देते हैं इसके ऊपर कि इसको नियत के अलावा, ठीक है, नियत तो बिल्कुल क्लियर है ना कि अगर कोई शख्स जो है वो कुरान की तौहीन की नियत से उसको नजर आतिश करे, जैसे कि यूरोप के अंदर, ठीक है, वो तो बिल्कुल क्लियर है कि यूरोप में जो उन लोगों ने कुरान को, कुरान मजीद के मसहफ को आग लगाई, तो वो इख्तलाफ से बचने के लिए नहीं लगाई थी उन्होंने, ठीक है ना, कुरान की हिफाजत के लिए लगाई थी, बल्कि वो डिसेग्रेशन की नियत से जो है वो कुरान के मसहफ आग लगाई, ठीक है। तो नियत तो साफ जाहिर है कि सहाबा की जो नियत थी वो हिफाजत कुरान थी, उसकी नियत जो होती है वो, लेकिन अब मुतलकन कि कुरान के किसी सफ़े को अगर किसी ने जलाया और किसी और नियत से जलाया कि जैसे भाई ये पाँव के नीचे आएगा, जैसे वो होता है ना पानी में बहा देते हैं, ठीक है, तो पानी में बहाने का तो पानी कहीं नहीं है, तो अब कहाँ कहाँ बहे, समंदर ही कहीं नहीं है, दूर दूर ना दरिया है ना समंदर है, तो अब उसको जो है वो नजर आतिश करके उसको उसकी हिफाजत करें, ठीक है, कि लोगों के या किसी गंदी जगह पे ना गिर जाए, किसी के पैर के नीचे ना आ जाए, किसी जानवर के जो है वो नजासत में शामिल ना हो जाए, उस वजह से इसके ऊपर जो फतवा है वो मेरे इल्म में, मेरी नज़र में इस वक्त नहीं है, किसी को अगर पता हो तो बता सकते, शायद बिलोरी टाउन की साइट पर तलाश कर रहे हैं। मैंने एक्चुअली आखिर में मुझे ध्यान में आया था तो मैंने जल्दी से ना उसको लिखा और बिलोरी टाउन के साइट पे, लेकिन मिला नहीं उसके ऊपर, वो दूसरा ही आ गया, शुरू हो गया यूरोप वगैरह के अंदर जो मुस्लिम हो रहे। तो आज के दौर में वैसे तो अमूमी तौर पर यही है कि जो आपके पास पुरानी आयात के कागज वगैरह जमा हो जाते हैं ना, तो उनको अपने घर के अंदर कहीं पे किसी थैली वगैरह के अंदर किसी बैग में आप उसको जमा कर लें, और जब वो अच्छे खासे जमा हो जाएं तो फिर या तो अगर आप समंदर के किनारे रहते हैं और वहां पर कोई वो दूसरा मसला नहीं है कि पोल्यूशन वाला मसला, तो आप जाके समंदर में इसको बहा दें, ठीक है, या ये कि गवर्नमेंट ने भी मुसलमान मुल्कों के अंदर ऐसे बॉक्सेस वगैरह मस्जिदों के बाहर या किसी मुकाम पर रखे होते हैं कि जहाँ पे पुरानी आयात के वो जमा करते रहते हैं, और फिर उसके बाद वो कलेक्टिवली उसको कहीं जहाँ पर जाके डिस्पोज ऑफ करते हैं, किस तरह करते हैं एग्जैक्टली नहीं पता।
जो साइड में पेपर के साइड में इतने सारे पीसेस पे बटन पीछे से उसका कहते हैं।
इसके ऊपर कुरान का कोई लफ्ज ना लिखा हुआ है, कोई हर्फ नहीं लिखा हुआ,
जो डिजाइन होता है उसके कोई पीस छोटा सा रखता हूँ।
वैसे जो हुरमत है वो तो कुरान के हुरूफ की है, ठीक है, लेकिन अदब का शायद ये बताते हैं कि इवन अगर किसी चीज को कुरान जो कि जिसके ऊपर हुरूफ नहीं लिखे हुए लेकिन वो कुरान का ही हिस्सा था, ठीक है, तो उसकी भी ऐसे ही अदब करना चाहिए, उसको भी ऐसी ख्याल करना चाहिए जैसे कि कुरान के हुरूफ का अदब है, तो उनको भी ऐसी ही किसी जगह पे जमा कर लें जहाँ पे आप पुरानी आयात के टुकड़े वगैरह जमा करें। जी
अली इकदार से सर ने बताया कि ऊपर डिजाइन बनाने का हिस्सा, इसके अलावा भी आता है कि आप किसी केस के अंदर कुरान रखते हैं या किसी कोई पेपर ऐसी निशानी के तौर रखते हैं उसका भी डिजाइन अदब करें क्लास कुरान का।
हाँ, किताबों के आदाब वाले मौजूद में आपने अपने इस तरह की तफसीलात भी पढ़ी होंगी, अदब इस तरह से करें। उतना कर सकते हैं उतना करें, ठीक है, और खुद करने के ऊपर ज्यादा दें, लोगों को बता देना चाहिए कि कुरान मजीद से जो नस्बत वाली चीजें हैं उनका हमें अदब करना चाहिए, लेकिन अगर कोई हुरूफ कुरानी के अलावा चीज़ों का इतना ज़्यादा एहतियात नहीं करना ना, तो उसको बहुत ज़्यादा खुश ना करें उसको, ठीक है, क्योंकि असल चीज़ जो है हुरूफ कुरानी ही है, खुद करें ना जितना कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को इतना ज़्यादा उसके ऊपर वो ना करें। अच्छा, तो आपके जमाने में दीन जो है वो रशिया तक फैला था, आर्मीनिया में तो वैसे ही वो हमने पढ़ चुके हैं, आर्मीनिया और आजरबैजान के महाज के ऊपर लड़ रहे थे, तो फतुहात हुई थी। अब्बास सुल्तान के बेटे और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सुल्तान के भाई कसम बिन अब्बास सुल्तान का तذکرہ है कि उस्मान सुल्तान के जमाने में उनकी बरकत से रूस में इस्लाम फैला, कसम बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला। उनकी मुशाबियत नबी अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ज्यादा थी, देखने वो नबी अलैहिस्सलाम जैसे लगते थे, कसम बिन अब्बास सुल्तान। इन्हीं के हाथ पर समरकंद और बुखारा फतह हुआ था और समरकंद के अंदर ही वो शहीद हुए और वहीं पे मदफून है। फिर हजरत उस्मान रज़ान के अपने बेटे सईद बिन उस्मान बिन अफान रज़ान का भी जिक्र आता है कि वो भी एक लश्कर के अमीर थे और उन्होंने भी रूस का बहुत सारा इलाका फतह किया था और उनकी तदफीन भी समरकंद में हुई। ठीक है, यानी उस जमाने में जो जो रशियन एम्पायर थी, ये रशियन एम्पायर ना बहुत पुरानी है। ठीक है, सोवियत जार्स इनको, इनके हुक्मरानों को कहते हैं। तो मुसलमानों ने जब एक्सपेंशन शुरू करी तो ये रूस तक जो है वो उनकी एक्सपेंशन हुई। तो उस्मानी दौर के जमाने में ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, उस जमाने में तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक मुसलमान तो नहीं थे ना, अभी तो मुसलमान वहां पहुंच रहे थे, तो उस वक्त वो रूस के इलाके का ही हिस्सा समझी जाती थी। फिर ये जो है मुसलमानों के कब्जे में आ गई, लेकिन उससे मजीद फर्दर नॉर्थ मुसलमान नहीं गए सिवाय चेचनिया, दागिस्तान। ठीक है, ये दो ऐसे इलाके हैं जो कि इवन मजीद नॉर्थ जाकर के आते हैं, वरना ये आजरबैजान, उज़्बेकिस्तान वगैरह सारे इलाके जो हैं ये फिर उस्मान सुल्तान के जमाने में फतह हुए थे। कुरान मजीद के बोसीदा औरात जलाने वाले का हुक्म, अल्लाह इसके ऊपर बेनोरी टाउन का फतवा है। एक शख्स ने एक मसरूफ गुजरगाह रोड के एक तरफ जमीन पर मुकद्दस औरात और दो अदद कुरानी नुस्खे जलाए। मुलजिम को जब पुलिस के हवाले किया गया तो उसका ये इतराफी बयान सामने आया कि मैंने गैस के मीटर पर रखे मुकद्दस औराक को ठिकाना लगाने के लिए आग लगाई थी, इनमें दो अदद गैर मुजद्दद कुरानी नुस्खे भी थे, लेकिन इससे तौहीन मकसूद नहीं थी। अब वो अपने इस फेल पर नादिम और तायब है, ताहम दो कुरानी नुस्खे मुकम्मल जलने से बचा लिए गए। इस अफसोस में वाक़े पर अवाम में काफ़ी इश्तियाल की कैफियत आपसे इतमास है कि शरीयत की रोशनी में इसका जवाब इनायत फरमाएं। इतना बड़ा नहीं है तो हम पढ़ लेते हैं। कुरान मजीद या उसके औराक को एहानत की नीयत से, यानी तौहीन की, यानी इंसल्ट करने की नीयत से जलाना कुफ्र। ठीक है, अलबत्ता कुरानी औराक अगर बोसीदा हो जाए और नाकाबिले फायदा, यानी आप मजीद आप उनको अच्छे से पढ़ नहीं सकते, वो इतना उसका बोसीदा हो गए, खराब हो गए कि अब हमसे फायदा नहीं उठा सकते, तो इस सूरत में कुरान मजीद का वो सीधा नुस्खा या औराक कुरानी को पाक साफ कपड़े में लपेट कर ऐसी जमीन में दफन करने का हुक्म है जिस पर इंसानों की आमदोरफ्त ना होती हो, बस बोसीदा औराक कुरानी जलाना ममनू है। अलबत्ता अगर किसी ने नासमझी में औराक कुरानी को बेअदबी से बचाने की गर्ज से जला दिया तो उसको काफिर नहीं करार दिया जाएगा। लिहाजा सूरत मसूला, यानी जो सवाल करने वाले ने जो सूरत बताई है ना, उसमें सवाल के साथ मुनसलिका हलफनामे के मुताबिक मस्कूरा शख्स से नासमझी में जलाने का जो अमल हुआ है इस पर वो सिद्के दिल से तायब हो चुका है, लिहाजा ऐसे शख्स को तौहीन कुरानी का मुर्तकिब नहीं करार दिया जाएगा और ना ही उसको दायरा इस्लाम से खारिज शुमार किया जाएगा। अलबत्ता ऐसे शख्स को कोई ताजीरी सजा, इस ताजीरी सजा होती है जो कि हुक्मरान जो है ना वो किसी शख्स को देता है इस मकसद से कि भाई ये आम लोग जो है ना उस किस्म का काम करना ना शुरू कर दें और इसको भी एक तंबी हो जाए कि आइंदा ये इस किस्म का काम दोहराए नहीं, तो ऐसी सजा जो हुक्मरान अपनी तरफ से देते हैं ना उसको ताजीरी सजा कहते हैं, ताकि आइंदा ऐसी गलती और बे एहतियाती सरजद ना हो। अलबत्ता मस्कूरा शख्स चूंकि अपने किए पर शर्मिंदा है और तौबा तायब हो चुका है, लिहाजा ताजीरात पाकिस्तान के मुताबिक, यानी जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक उसको उम्र कैद की सजा नहीं दी जाए। ठीक है, क्योंकि उसने गलती में किया और फिर तौबा भी कर ली, गलती को मान भी लिया कि हमसे गलती हो गई, इसके अलावा कोई भी ताजीरी सजा उसको देना चाहे जस्ट इस पर्पज के लिए कि भाई ये ना हो कि भाई ही गॉट अवे विद इट, तो उसका मतलब ये है कि आप कोई और भी आकर के इस तरह के काम करना शुरू कर दें, तो कुछ ना कुछ जो है ना वो उसको ऐसी सजा मिल जाए कि लोगों को पता चल जाए कि भाई ऐसा नहीं है कि आप करेंगे और आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो यानी जो फुकहा का फैसला है आज के दौर में ये है कि जलाने वाला काम ना किया जाए। पानी का तो खैर जिक्र यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको यह है कि आप जमीन में दफन करने और ऐसी जगह पे जिसके ऊपर लोगों के चलना फिरना ना होता हो। ठीक है इंशाल्लाह। अभी वैसे भी और मुताला कर भी नहीं सके थे, टाइम भी मुकम्मल हो ही गया तकरीबन, तो यहाँ पे हम क्लास रोकते हैं। कोई सवाल कोई पूछना चाहे ऑनलाइन या ऑन साइट, आप कुछ कह रहे थे, कोई और सवाल है? अदर हुफाज न्यूज आया मेमोरी। जी हाँ ठीक है, जजाकअल्लाह खैर कसीरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
और